छठा, बोर्नियो के प्राचीन भारतीय उपनिवेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा है। जावा की तुलना में वह 7 गुने से भी अधिक है, पर उसकी आबादी बहुत कम है। अभी वह 50 लाख तक भी नहीं पहुंच पाई है। बोर्नियो का एक भाग मलेशिया के अंतर्गत है और शेष इंडोनेशिया में है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य द्वीपों वह प्रदेशों के समान बोर्नियो में भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी, जिनका परिचय हमें वहां उपलब्ध हुए अभिलेखों द्वारा मिलता है। इसमें सबसे पुराने वे 4 शिलालेख हैं जो कि 1876 ईस्वी में मुअरा कामंग नामक स्थान से प्राप्त किए गए थे। यह स्थान कोती या कुतेई प्रदेश में महकम नदी के तट पर है। चीन देश की एक पुरानी नौका के भग्नावशेष भी इस स्थान से उपलब्ध हुए हैं, जिससे सूचित होता है कि कभी यह जलमार्ग द्वारा यातायात का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। संभवतः भारतीयों ने भी जलमार्ग से ही आकर इस प्रदेश में अपनी बस्तियों का सूत्रपात किया था। मुअरा कामंग से सुवर्ण निर्मित 3 प्राचीन वस्तुएं भी उपलब्ध हुई हैं, जिनमें एक विष्णु की मूर्ति है। अभिलेख प्रस्तर स्तंभों पर उत्कीर्ण है, जिनकी ऊंचाई 6 फीट के लगभग है। ये स्तंभ यज्ञों के लिए यूपों यज्ञ स्तंभों के रूप में बनवाए गए थे और इन पर जो अभिलेख उत्कीर्ण है उनका संबंध राजा मूलवर्मा के साथ है, जिसने कि यज्ञों का अनुष्ठान करते समय इन यूपों का निर्माण कराया था। ये अभिलेख शुद्ध संस्कृत में है और इनकी लिपि से यह अनुमान किया गया है कि इन्हें 5वीं सदी के प्रारंभिक भाग में उत्कीर्ण कराया गया था। पहले अभिलेख में मूल वर्मा ने पशु भूमि वृक्ष आदि का दान कर जो पुण्य कार्य के लिए उनका उल्लेख है, इन्हीं पुण्य कृत्यों के उपलक्ष्य में विप्रों द्वारा उस यूप को स्थापित किया गया था जिस पर कि यह लेख उत्कीर्ण है। दूसरा अभिलेख अधिक महत्व का है, उसमें मूल वर्मा के वंश का परिचय इस प्रकार दिया गया है। श्रीमतः श्री नरेन्द्रस्य कुंडुनगस्य महात्मनः पुत्रो शववर्मा विख्याय वंशकर्ता यथांशुमान तस्य पुत्रा महात्मान तयत्रतस्य इवागनय तेषां त्रयाणां प्रवरः तपोबलदमान विनतः श्री मूलवर्मा राजेन्द्रो यष्टवा बहुसुवर्णकम् तस्य यज्ञस्य यूपस्य युधिजेन्द्र संप्रकल्पितः। इस अभिलेख के अनुसार कुंडुंग नाम के नरेंद्र का पुत्र अश्ववर्मा था, जो अंशु वर्मा के समान एक नए वंश के कर्ता वंश परवर्तक के रूप में विख्यात हुआ। अश्ववर्मा के 3 पुत्र थे, जिनमें तप बल और दम की दृष्टि से मूल वर्मा सर्वश्रेष्ठ था। मूल वर्मा ने बहु सुवर्णक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके लिए ब्राह्मणों द्वारा यह यूप बनवाया गया। कुंडुंग शब्द संस्कृत का प्रतीत नहीं होता, अतः कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है कि मूल वर्मा के पूर्वज भारतीय न होकर बोर्नियो की किसी मूल जाति के थे। कंबुज कंबोडिया के राजवंश का प्रारंभ कौंडिन्य से हुआ। यह वहां के अन्यतम राजा राजेंद्र वर्मा के एक अभिलेख में सूचित किया गया है। सोमा कौंडिन्य वंश मरतल तिलको भूपर्तिभूरी कुर्ती। इसी प्रकार चंपा के राजवंश का प्रारंभ भी कौंडिन्य द्वारा हुआ कहा गया है। तत्र स्थापित वांसुलम कौंडिन्यस्तद द्विज सर्भ। कंबुज और चंपा दोनों के अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि कौंडिन्य का अश्वत्थामा के साथ निकट संबंध था। चंपा कंबुज और बोर्नियो तीनों के राजवंशों के प्रवर्तक के रूप में कौंडिन्य कुंडुंग का उल्लेख महत्व की बात है। कुंडुंग और कौंडिन्य तथा अश्वत्थामा और अश्ववर्मा अभिन्न थे, यह कल्पना असंगत नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उपनिवेशकों की जिस धारा द्वारा पहले पहल दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में अपनी बस्तियां स्थापित की गई थी, उसका नेता कौंडिन्य था और उसी के वंशजों या अनुयायियों ने विविध स्थानों पर अपने राज्य स्थापित किए थे। इसीलिए मूल वर्मा के पिता अश्ववर्मा को वंशकर्ता कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में उन वीर पुरुषों के लिए वंशकर्ता विशेषण का प्रयोग किया गया है जिन्होंने किसी नए राज्य की स्थापना की हो। राजा मूल वर्मा ने बहुसुवर्णक संज्ञा के जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया था उसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। वहां इसे अश्वमेघ अग्निष्टोम गोमेध और रासुई के साथ परिगणित किया गया है। अग्निष्टोमोश्वमेघस्य यगो बहुसुवर्णक राजसूयास्तथा यगो गोमेधो वैष्णवस्तथा। एक अन्य अभिलेख में वह प्रकेश्वर के पुण्य क्षेत्र में राजा मूल वर्मा द्वारा ब्राह्मणों को 20,000 गौवें दक्षिणा में दिए जाने का उल्लेख है। श्रीमतो नृप मुख्यस्य राज्ञः श्री मूल वर्मनः दानं पुण्यतमे क्षेत्रे यद्दत्तं वर प्रकेश्वर द्विजाति भयोगिनः कल्पेभ्यं विशन्ति गोसहस्त्रिकं तस्य पुण्यस्य यूपोयम् कृतो विप्रे रिहागते। मुआरा कामंग से प्राप्त 4 अभिलेखों के अतिरिक्त राजा मूल वर्मा के 3 अन्य अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं। इनका संबंध भी मूल वर्मा द्वारा किए गए दान पुण्य से ही है। यज्ञों का अनुष्ठान कर ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा मूल वर्मा द्वारा दी गई थी उसी का इन अभिलेखों में विशद रूप से विवरण दिया गया है। वह प्रकेश्वर क्षेत्र की स्थिति कहाँ थी यह निश्चित कर सकना कठिन है। संभवतः भारत के अमरनाथ और बद्रीनाथ के समान बोर्नियो में भी वह प्रकेश्वर शिव की पूजा प्रचलित थी और उसी के मंदिर के कारण उस स्थान का नाम भी वह प्रकेश्वर क्षेत्र पड़ गया था। राजा मूल वर्मा के 7 यूप अभिलेखों के अतिरिक्त बोर्नियो में 8 अन्य प्राचीन अभिलेख भी विद्यमान हैं जो एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। यह चट्टान पश्चिमी बोर्नियो में बातो पहुत नामक स्थान पर है जो कि सो अग्नगेई टेकारक नाम की जलधारा के समीप है। अभिलेखों के साथ साथ इस चट्टान पर छत्रों की एक श्रृंखला भी उत्कीर्ण है। ये अभिलेख अस्पष्ट हैं और उनमें कुछ शब्द पढ़े जा सके हैं, पर इन शब्दों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि इस चट्टान पर बौद्ध धर्म का वह सुप्रसिद्ध सूत्र उत्कीर्ण कराया गया था जो मलाया आदि अन्यत्र भी उत्कीर्ण मिलता है। यह सूत्र ये धर्मा हेतु प्रभवा तेषाम हेतु तथागतो हवै वदत तेषाम च युह निरोध एवं वादी महाश्रमण तथा उसके साथ एक अन्य श्लोक है जिन्हें इसी अध्याय में पहले उद्धृत किया जा चुका है। पश्चिमी बोर्नियो की एक चट्टान पर उत्कीर्ण इन बौद्ध सूत्रों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि पौराणिक हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी इस द्वीप में प्रचलित था। यूपों और चट्टानों पर उत्कीर्ण संस्कृत के अभिलेखों के अतिरिक्त बोर्नियो से पुरातत्व संबंधी अन्य भी अनेक ऐसे प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए हैं जो वहाँ भारतीय धर्मों तथा संस्कृति के प्रचार को प्रमाणित करते हैं। मुआरा कामंग के उत्तर में तेलेन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व में कोम्बेंड नामक स्थान पर एक गुफा है जिसमें बहुत सी प्राचीन मूर्तियों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। इस गुफा में 2 कठोरियाँ हैं। पिछली कोठरी से बलुए पत्थर से निर्मित 12 मूर्तियाँ, पत्थर को तराश कर बनाई गई अनेक कलाकृतियाँ तथा कुछ लकड़ी की कड़ियाँ मिली हैं जो जीर्ण दशा में हैं। मूर्तियाँ पौराणिक हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की हैं। पौराणिक हिंदू मूर्तियाँ शिव गणेश अगस्त नंदीश्वर ब्रह्मा नंदी स्कंद और महाकाल की है। गणेश की 2 मूर्तियाँ हैं। शेष मूर्तियों का संबंध बौद्ध धर्म से है। पौराणिक मूर्तियों में सबसे बड़ी महादेव शिव की खड़ी मूर्ति है। शिव जी कमलासन पर खड़े हैं। उनकी 4 भुजाओं में से दाईं ओर की 2 भुजाओं में माला और त्रिशूल है और बाएं ओर की ऊपर वाली भुजा में चमर है। 1 भुजा खाली है। सिर पर मुकुट, गले में माला, यगो पवित्र और पैरों में कड़े पहने हुए हैं। बौद्ध मूर्तियों में एक ऐसी है जिसका दायां हाथ बरद मुद्रा में है। कुम्बेंग की गुफा से प्राप्त इन मूर्तियों की एक विशेषता यह है कि ये शुद्ध भारतीय कला की प्रतीत होती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया या जावा की कला का इन पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह अनुमान किया गया है कि इनका निर्माण ऐसे समय में हुआ था जबकि भारतीयों को बोर्नियो में अपने उपनिवेश स्थापित किए अधिक समय नहीं हुआ था। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहले यह मूर्तियाँ कहीं अन्यत्र मंदिरों में प्रतिष्ठापित थीं। संभवतः शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए इन्हें कुम्बेट की गुफा में लाकर छिपा दिया गया था। जिन मंदिरों में ये प्रतिष्ठापित थी वे लकड़ी द्वारा बनाए गए होंगे, इसीलिए उनके कोई भग्नावशेष इस समय विद्यमान नहीं है। कुम्बिंग की गुफा में लकड़ी की जो कड़ियाँ मिली हैं वे भी संभवतः किसी मंदिर से ही लाई गई हैं। ये मंदिर महकम नदी की घाटी के प्रदेश में स्थित होंगे क्योंकि भारतीयों द्वारा अपने जो इन उपनिवेशों बोर्नियो में स्थापित किए गए थे वे प्रधानतया इसी प्रदेश में थे। महकम नदी के प्रवेश प्रदेश के अतिरिक्त बोर्नियो की एक नदी कपुआस भी है। इसके तटवर्ती प्रदेश से भी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बातों बहुत कि जिस चट्टान का उल्लेख ऊपर किया गया है वह कपुआस नदी के क्षेत्र में ही है। इसके अतिरिक्त सपॉक नामक स्थान पर एक मुखलिंग मिला है जो वहाँ पौराणिक धर्म की सत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। संगगव से दो पंक्तियों का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। संपित नदी के मुहाने से एक पात्र मिला है जिसमें सोने के बहुत से ऐसे पत्थर थे जिन पर पुराने अक्षर उत्कीर्ण हैं। बोर्नियो से उपलब्ध यह सब पुरातत्व संबंधी सामग्री इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत के नाविकों और व्यापारियों ने अच्छी बड़ी संख्या में वहां जाना प्रारंभ कर दिया था और वहां अपने अनेक उपनिवेश भी स्थापित कर लिए थे। सातवां, बाली सेलेबस और फिलिपीन में भारतीय संस्कृति का सूत्रपात। बाली यवद्वीप जावा के पूर्व में बाली द्वीप की स्थिति है। बाली एक छोटा सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल केवल 2065 वर्ग मील है। इसकी जनसंख्या 10 लाख से कुछ अधिक है। दक्षिण पूर्वी एशिया में यही एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ के निवासी पौराणिक हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इंडोनेशिया और मलाएशिया के अंतर्गत विविध द्वीपों और प्रदेशों के लोग अब भारतीय धर्मों का परित्याग कर इस्लाम को अपना चुके हैं, पर बाली के निवासी वर्तमान समय में भी उसी ढंग से पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे कि प्राचीन काल में सुमात्रा, बोर्नियो, मलाया आदि अन्य सब प्रदेशों के लोग किया करते थे। भारत से बाहर के इन प्रदेशों में हिंदू धर्म का क्या रूप था, इसका अनुशीलन बाली में प्रचलित धर्म द्वारा भली भांति किया जा सकता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति के इतिहास में बाली द्वीप का विशेष महत्व है। पर आश्चर्य की बात यह है कि बाली द्वीप से अभी तक कोई ऐसे पुरातत्व संबंधी प्राचीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे वहाँ की प्राचीन भारतीय बस्तियों, उनके राजाओं और वहाँ भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन चीनी साहित्य है जिसमें बाली का उल्लेख पोली नाम से किया गया है। चीनी साहित्य में वर्णित पोली बाली ही है। यह मत फ्रेंच विद्वान पेलियो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अनेक अन्य विद्वानों ने पोली की समता सुमात्रा के उत्तर पश्चिमी प्रदेश से निरूपित की है। इसका कारण यह है कि चीनी ग्रंथों के अनुसार पोली एक सुविशाल प्रदेश था जिसे पश्चिमी से पूर्व की ओर पार करने में 50 दिन और उत्तर से दक्षिण की ओर पार करने में 20 दिन लगते थे। बाली जैसे छोटे से द्वीप पर यह वर्णन कदापि लागू नहीं होता, पर अन्य सब दृष्टियों से विचार करने पर वर्तमान समय में विद्वानों का यही मत है कि चीनी ग्रंथों को पोली बाली द्वीप ही था। चीन के लियांग वंश 502 से 556 ईस्वी के इतिहास में पोली बाली का सबसे पूर्व उल्लेख आया है। वहां लिखा है कि राजा का वंश नाम कौंडिन्य है। इससे पहले उसका चीन के साथ कभी संबंध नहीं हुआ था। अपने पूर्वजों और उनके काल के विषय में पूछने पर वह केवल इतना ही बता सकता है कि शुद्धोधन की पत्नी उसी के देश की कन्या थी। राजा बेल बूटे वाली रेशमी वस्त्र शरीर पर पहनता है, सिर पर सुवर्ण निर्मित एक ऐसा मुकुट धारण करता है जो सप्त रत्नों से जटित होता है। सुवर्ण जटित तलवार को हाथ में लिए यह सुवर्ण सिंहासन पर बैठता है और उसके पैर चांदी के पाद पीठ पर रहते हैं। उसकी परिचारिकाएं स्वर्ण पुष्पों और विविध प्रकार के रत्नों से विभूषित होती हैं। उनमें से कुछ श्वेत चंवर का मोर छल लिए रहती हैं। अब राजा कहीं बाहर जाता है तो उसका रथ हाथी द्वारा खींचा जाता है। रथ का निर्माण नानाविध सुगंधित काष्ठों द्वारा किया जाता है। रथ के ऊपरी पंखों का चौरस चंदवा होता है जिसके दोनों ओर जरी के पर्दे लटके रहते हैं। शंख और नगाड़े बजाते हुए लोग उसके आगे और पीछे चलते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 6वीं सदी में बाली एक समृद्ध तथा उन्नत राज्य था। 518 ईस्वी में वहां के राजा ने चीन के सम्राट की सेवा में अपना राजदूत भी भेजा था। इसके बाद 523 ईस्वी में जावा के राजा द्वारा एक अन्य दूत मंडल चीन भेजा गया था। 523 में जावा के जिस राजा ने अपना दूतमंडल चीन भेजा था, चीनी ग्रंथों में उसका नाम पिनक लिखा गया है, जिसे शलेगल में कल विड़ंग का रूपांतरण माना है। चीन के सुई राजवंश 576 से 618 ईस्वी के इतिहास में भी बाली पोली का उल्लेख मिलता है। वहां इस देश के राजा के कुल को चरियक कहा गया है, जो संभवतः क्षत्रिय का रूपांतर है। इस इतिहास में यह भी लिखा है कि पोली के निवासी ऐसे अस्त्र का प्रयोग करते हैं जो गोलाकार होता है और जिसके बीच में पकड़ने के लिए छेद रहता है। यह संभवतः कृष्ण के चक्र के समान एक अस्त्र था, जिसे बाली के लोग प्रयुक्त किया करते थे। इसी का इतिहास में यह भी लिखा है कि बाली के निवासी कुपेई नामक पौधों के फूलों को काटकर कपड़े बनाया करते थे और उन्हें शरीर पर धारण करते थे। कुपेई स्पष्टतया कर्पास कपास का द्योतक है, जिसे भारतीय लोग अपने देश से बाली भी ले गए थे और वहां भी उसकी खेती करने लगे थे। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध चीनी यात्री इत सिंह ने जो यात्रा विवरण लिखा है, उसके अनुसार बाली में बौद्ध धर्म के मूल सर्वास्तिवादी निकाय का प्रचार था। इस द्वीप में भारतीयों ने कई सदी पूर्व ही अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और अन्य भारतीय धर्मों के साथ बौद्ध धर्म का भी वहां प्रचार हो गया था। सेलेबस सुलेविस बोर्नुए के पूर्व तथा फिलीपीन के दक्षिण में केकरे की आकृति का एक द्वीप है, जिसे सेलेबस या सुलेविस कहते हैं। सुलेविस का अर्थ है लौह द्वीप। प्राचीन समय में यह द्वीप भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस द्वीप में कर्मा नामक नदी के तटवर्ती सेम पागा स्थान से पीतल की एक सुंदर बुद्ध मूर्ति मिली है। मूर्ति का दायां हाथ तथा कंधा खुले हैं, चेहरा गोल तथा भव्य है, हाथ पैर टूटे हुए हैं। मूर्ति पर जो चीवर बनाया गया है, उसके चूनट को देखकर मथुरा की कुषाण कालीन लाल पत्थर की मूर्तियों का स्मरण हो आता है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति सुमात्रा और जावा की प्राचीन मूर्तियों से भिन्न प्रकार की है। इसे अमरावती दूसरी सदी या प्रारंभिक गुप्तकाल चौथी सदी की शैली की मूर्ति कहा जा सकता है। सेलेबस से उपलब्ध हुए यह मूर्ति इस तथ्य की ओर संकेत करने के लिए पर्याप्त है कि चौथी पांचवी सदी तक इस द्वीप में भी भारतीय संस्कृति का प्रवेश हो गया था। फिलीपीन में भी अनेक स्थानों पर पुरातत्व संबंधी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो वहां के प्राचीन समय में भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता का संकेत करते हैं। 1820 ईस्वी में सीबू से तांबे की एक शिव मूर्ति मिली थी, जो 3 इंच से कुछ बड़ी और उसकी आकृति पर भारतीय या जावा की कला की छाप है। मिंदानो द्वीप के स्पे राजा नामक कस्बे के समीप एक खड्डे से सोने की एक मूर्ति उपलब्ध हुई है, जो एक देवी की है। मूर्ति के सिर पर सुसज्जित मुकुट है और हाथ तथा दायां भुजाएं अनेक आभूषणों से विभूषित हैं। गले तथा कंधों पर अनेक विध आभूषण हैं। मूर्तियों का वजन 2 सेर के लगभग है और इसके निर्माण के लिए शुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है। फिलीपीन की प्राचीन लिपियां भी ब्राह्मी मूलक थी। इनमें जो बहुत से ग्रंथ विद्यमान थे, स्पेन के लोगों ने 16वीं सदी में उनका विनाश किया। फिलीपीन के निवासी यह मानते हैं कि उनकी आचार संहिता मनु और लाओत्से की स्मृतियों पर आधारित है, इसीलिए वहां की विधान सभा द्वारा पर इन दोनों की मूर्तियों भी स्थापित की गई हैं। फिलीपीन के अनेक प्रदेश अब भी तक भी विषय कहते हैं। गुप्त काल में प्रांत या जिले के लिए भारत में विषय शब्द का ही प्रयोग हुआ करता था।